लाखों की गाड़ी एक चाबी और एक ब्रेक पर और करोड़ों का घर एक छोटे से ताले और चाबी पर निर्भर करता है। श्रोताओं, ठीक उसी तरह हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। सोच हमारा मन है और व्यवहार हमारा कर्म। हमारे स्वभाव से हमारी पहचान बनती है। हमारा स्वभाव जैसा होता है, हमारा मन भी वैसा ही हो जाता है। और श्रोताओं, इसीलिए यदि व्यवहार करने से पहले थोड़ा सोच समझ लें तो हो सकता है कि हमारी दिन प्रतिदिन की बहुत सी समस्याएं खत्म हो जाएं और हम सुकून से रह सकें। इसी के साथ ही आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस खूबसूरत सुबह में मैं आपके साथ हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट रेनू कटारिया। गुड मॉर्निंग रेनू।
गुड मॉर्निंग आकर्षिता एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू डियर लिसनर्स आर फॉर एवर एक्साइटिंग डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेर इन ओवर द नेक्स्ट हाफ एन आवर वी विल ब्रिंग यू द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज द 12th of July. So, Akarshita, let's begin with the headlines first.
जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट से पहले नई दिल्ली में कल नीति आयोग के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्र और कई जाने माने अर्थशास्त्री तथा विशेषज्ञ बैठक में उपस्थित थे। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 23 जुलाई को लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करेंगी। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होगा। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मुंबई में नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के छात्रों को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति सशक्त भारत विकसित भारत 2047 के निर्माण में उच्च शिक्षा संस्थानों की भूमिका शीर्षक पर मुख्य भाषण देंगे। इस आयोजन का उद्देश्य विकसित भारत 2047 पहल के अनुसार भारत के भविष्य को आकार देने में उच्च शिक्षा संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना है। केंद्रीय बल पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण लागू करेगा। अग्निपथ योजना पर बहस के बीच केंद्रीय बलों ने घोषणा की है कि वे पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण लागू करेंगे। सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल जैसे केंद्रीय बलों के प्रमुखों ने कहा है कि पूर्व अग्निवीरों को आयु में छूट मिलेगी और उनके लिए कोई शारीरिक दक्षता परीक्षा भी नहीं होगी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की महानिदेशक नीना सिंह ने कहा कि गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती का एक बड़ा कदम उठाया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ ने भी इस संबंध में सभी प्रबंध कर लिए हैं। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने कहा कि अग्निवीर सैनिकों के रूप में तैयार हो रहे हैं और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इससे सभी सेनाएं लाभान्वित होंगी।
The Central Bureau of Investigation has arrested a man called Rakesh Ranjan, alias Rocky, who is believed to be the kingpin in the NEET paper leak case. He has been sent to the CBI's custody for 10 days. Rocky is also linked to another key figure in this racket, Sanjeev Mukhia, who has been involved in the scam for 2 decades and is on the run. The arrest of Ranjan or Rocky could help CBI wide open the NEET paper leak case. The probe agency has so far arrested over a dozen people, including the principal and vice principal of a school in Jharkhand's Hazaribagh. The CBI and various state police forces are investigating a national racket that involves leaking of question papers for competitive exams like NEET. The CBI has so far filed 6 FIRs, including 5 for 3 separate cases in Bihar. The probes so far indicate that the NEET paper leak may have its origins in the Oasis school in Hazaribagh. Papers leaked from there also made their way to Bihar, a CBI official said. The NEET UG exam is taken for admission to undergraduate medical courses. The central government has set up a single member committee to investigate the candidature claims and other details of Pooja Khedkar, a probationary IAS officer recently embroiled in controversy over her alleged misuse of power as a civil servant. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions has announced that the committee, headed by an additional secretary level officer, will submit its findings within 2 weeks. This inquiry comes in the wake of allegations surrounding Ms. Khedkar's conduct and qualifications. Ms. Khedkar is a 2023 batch IAS officer of the Maharashtra cadre who secured an All India rank of 841 in the UPSC exam, sparked a controversy recently when she used her private Audi car with a red-blue beacon light and a VIP number plate. She allegedly demanded facilities not typically available to probationary officers. A report by Pune collector Suhas Dwise detailed Ms. Khedkar's repeated demands for special treatment, including a separate cabin, car, residential quarters and a pune, even before officially beginning her training on June 3rd. These requests were denied. The IAS trainee was also accused of removing the nameplate of a senior official at the Pune collector's office when he allowed her to use his antechamber as her office. The controversy led to Ms. Khedkar's transfer from Pune to Vashim in central Maharashtra. Further allegations suggest Ms. Khedkar may have submitted fake disability and other backward or OBC certificates to clear the civil services exam. Reports also claim she provided a mental illness certificate but failed to report to AIIMS Delhi for verification when summoned in April 2022, citing a COVID infection.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को स्वास्थ्य संबंधी कुछ जटिलताओं के कारण दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती कराया गया है। अभी उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत में तेज और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। सोमवार तक कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में अत्यधिक तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले चार दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम, बिहार तथा पूर्वोत्तर भारत में व्यापक रूप से हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है।
चारधाम यात्रा पिलग्रिम्स कैन नाउ क्रिएट देयर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट और आभा ऑन द ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल। द उत्तराखंड गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज लॉन्च द पोर्टल कॉल्ड ई स्वास्थ्य धाम। द पोर्टल हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द चारधाम यात्रा पिलग्रिम्स हेल्थ पैरामीटर्स। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री सेड इन अ रिलीज दैट द ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ बेनिफिट्स टू द पिलग्रिम्स एंड वन ऑफ देम इज द जनरेशन ऑफ आभा। Pilgrims can easily create their ABHA 14-digit number at the eSwasthadham portal in a couple of minutes. Till date, over 65 crore ABHA have already been created. ABHA comes with several benefits for citizens, including storing and managing their health records safely. It also allows them to share the health records securely with doctor anytime and anywhere with their consent. Through ABHA, citizens can avail several digital health benefits from avoiding the long queues at healthcare facilities for registration to facilitating doctor appointments. Chief economics commentator at an English daily, Financial Times, Martin Wolf, has estimated India to be a superpower by 2047. In a newspaper column, the London-based economist Mr. Wolf said, with four times more population, India will match the economic output of the US by 2047. He said if India's GDP were to grow even at 5% a year by 2047 and US GDP were to grow at 2.3%, India's economy would equal that of the US in purchasing power parity terms. Mr. Wolf added that India has strengths and it has good relations with the West, to which it is strategically important. He said that India could be what the IMF calls a connector country in the world economy. He also said that India can and should lead in the liberalization of trade domestically and globally. He added that India also has the advantage of its diaspora, which is enormously influential, especially in the US. He added that India's human resources give it the capacity to diversify and upgrade the economy over time.
चेक गणराज्य की 31वीं वरीयता प्राप्त बारबोरा क्राइजिकोवा ने कल रात लंदन में सेमीफाइनल में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकीना महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश किया। क्राइजिकोवा ने रायबाकीना को 3-6, 6-3, 6-4 से हराया। कल फाइनल में क्राइजिकोवा का मुकाबला इटली की जैस्मीन पावोलिनी से होगा। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज स्पेन के कार्लोस अल्काराज का मुकाबला रूस के दानियल मेदवेदेव से होगा। एक अन्य सेमीफाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच का मुकाबला 25वीं वरीयता प्राप्त इटली के लॉरेंजो मुसिटी से होगा।
And moving on to cricket, the Board of Control for Cricket in India, or BCCI, has released the schedule for the Indian cricket team's tour of Sri Lanka. The tournament will kick off with 3 T20Is at the Palakkal International Cricket Stadium on the 26th, 27th and 29th of July. This will be followed by 3-match ODI series in Colombo at the R. Premadasa International Stadium on 1st, 4th and 7th of August. The Indian national team will arrive in Sri Lanka on the 22nd of this month. This will be India's first tournament under the newly appointed head coach Gautam Gambhir. However, the squad for the upcoming tour is yet to be announced.
और श्रोताओं, अब आज सवेरे में प्रमुख महानगरों से जुड़ी प्रमुख खबरें चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद की खबरों के साथ हैं रेनु।
थैंक यू आकर्षिता। आई विल बिगिन विद चेन्नई मेट्रो फर्स्ट। The state government has brought to force the amendments to the Tamil Nadu Shops and Establishment Act effective from July 2nd. The Legislative Assembly passed the legislation last year to ensure better workplace facilities for employees in shops and establishments. Every employer is now required to provide and maintain sufficient supply of wholesome drinking water at suitable points conveniently situated for all persons employed in the shop or establishments. Another news from Chennai. The government of Tamil Nadu has planned a deep tech fund to support the startups in the sector of information technology and digital services. The Minister for Information and Technology, PTR Palanivel Rajan, said the fund would have the financial and mentorship support of the global experts in deep tech. The policy would be in line with the proposed national deep tech policy and would focus on technology product design, providing support for product development and manufacturing. Moving on to Bengaluru Metro. The Bangalore Metropolitan Transport Corporation, or BMTC, that runs city bus services in the state capital, held consultations with the experts on operating electric bus services. The experts shared their experiences and best practices on the subject. The operation planning for electric buses, the importance of data for optimizing operations, the design of electric buses and the challenges associated with electrification was discussed during the meeting. The consultation was organized by Convergence Energy Services in partnership with the United States Agency for International Development Program. Diverse group of stakeholders representing original equipment manufacturers, bus operators, battery companies and charging point operators were present during the consultations. The consultations focused on sustainable and efficient public transportation in India, collaborative efforts essential to overcome challenges and leverage opportunities in the electric mobility sector. And the last news that I have, Akarshita, is from Hyderabad Metro. Telangana Chief Minister A. Revanth Reddy has directed all revenue-generating departments in the state to strive to meet their annual targets and implement necessary measures to increase revenue compared to the previous fiscal year. He emphasized the importance of strict measures to prevent tax evasion across all departments. The Chief Minister instructed each department to set monthly targets in line with their annual goals and to regularly review their progress. He also stressed the need for transparency in revenue collection and suggested restructuring departments if necessary to enhance revenue generation. He held a review meeting in Hyderabad last evening with key officials from the excise, commercial taxing, mining, stamps and registrations and transportation departments. Various issues were discussed during the nearly four-hour meeting. An official release states that the Chief Minister noted that the revenue generated up to June this fiscal year was not promising compared to the annual target. And moving on to you, Akarshita, let's have some news from the rest of the metros.
जी, तो श्रोताओं अब चलते हैं दिल्ली की ओर. प्रोफेसर मोहम्मद शकील को जामिया मिलिया इस्लामिया का कार्यवाहक कुलपति बनाया गया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल प्रोफेसर शकील की नियुक्ति को मंजूरी दी है. दिल्ली में बाढ़ की तैयारियों को लेकर कल दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई. इस बैठक में दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल सहित दिल्ली सरकार के कई विभाग मौजूद रहे. इस दौरान शहर के प्रमुख नालों की सफाई व्यवस्था और बाढ़ की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों को लेकर समीक्षा की गई. दिल्ली के बवाना में मुनक नहर की दीवार टूटने और इलाके में पानी भरने पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने चिंता व्यक्त की है. उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार और बाढ़ नियंत्रण विभाग मंत्री को एक पत्र भी लिखा है. पत्र में श्री सक्सेना ने सलाह दी है कि दिल्ली सरकार हरियाणा सरकार के साथ समन्वय बनाए और नहर को जल्द से जल्द दुरुस्त करे. उपराज्यपाल ने राजधानी में पानी की आपूर्ति को भी जल्द से जल्द सुनिश्चित करने को कहा है. उपराज्यपाल ने प्रभावित क्षेत्र में लोगों के स्वास्थ्य की जांच के लिए मेडिकल टीम भेजने के लिए भी स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं. वहीं दिल्ली की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कल आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की. नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली के लोग श्री केजरीवाल से नैतिक आधार पर अपने पद से इस्तीफा देने की उम्मीद कर रहे हैं. दिल्ली नगर निगम द्वारा राजधानी के शाहदरा क्षेत्र के एक पार्क में कैक्टस बगीचा बनाया जा रहा है. ये बगीचा निगम का पहला और दिल्ली का दूसरा कैक्टस गार्डन होगा. और श्रोताओं अब जानते हैं मुंबई की खबरें. मौसम विभाग ने मुंबई में आज और कल भारी से अत्यधिक भारी बारिश का संकेत देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. विभाग ने महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मध्य रेलवे ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल प्रतिष्ठित छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन पर कलाकारों के लिए अपनी रचनात्मकता दिखाने के लिए एक रोमांचक अवसर की घोषणा की है. मध्य रेलवे मुंबई के प्रमुख कला महाविद्यालयों के कलाकारों और छात्रों के लिए एक कला प्रतियोगिता आयोजित करेगा. चयनित कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए हेरिटेज बिल्डिंग के भीतर एक स्थान निर्धारित किया गया है. ये पहल न केवल कलात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करेगी बल्कि सीएसएमटी की सांस्कृतिक विरासत को और भी समृद्ध करेगी. वहीं राजस्व, पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने निर्देश दिया है कि खानाबदोश जाति जनजातियों के लोगों को जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए विभिन्न जिलों में अभियान शुरू किया जाना चाहिए. घुमंतू जाति के नागरिकों को विभिन्न प्रमाण पत्र दिए जाने के संबंध में विधान भवन में बैठक भी आयोजित की गई. और अब बारी कोलकाता की. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने रेसिंग की दुनिया में कदम रखा है. सौरभ गांगुली ने मोटर स्पोर्ट इवेंट इंडियन रेसिंग फेस्टिवल में एक टीम खरीदी है. उनकी टीम का नाम कोलकाता रॉयल टाइगर्स रेसिंग है. इसमें बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, कोची, अहमदाबाद आदि जैसी अन्य टीमें भी शामिल हैं. रेसिंग इवेंट अगस्त से नवम्बर के बीच आयोजित किया जाएगा. और श्रोताओं अब चलते हैं और जानते हैं मौसम का हाल. सबसे पहले जानते हैं दिल्ली के मौसम का हाल. आज दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहने और मध्यम बारिश होने की आशंका है. अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं. वहीं मुंबई में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री रहने का अनुमान है। यहां सामान्य तौर पर बादल छाए रहेंगे और भारी बारिश होने की आशंका है। और कोलकाता में आज आमतौर पर बादल छाए रहने और गरज के साथ हल्की बूंदाबांदी होने का अनुमान है। तापमान 34 और 26 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं।
Chennai is expected to have a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 24 degrees Celsius and the maximum will be around 34 degrees. Bengaluru is expected to have a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 20 degrees and the maximum will be around 28. Hyderabad is expected to have a generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between a minimum of 24 degrees and a maximum of 33 degrees Celsius.
और श्रोताओं, आइए अब जानते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या-क्या हुआ।
Yes, Akarshita, in 1674 on this day, Maratha ruler Shivaji Maharaj signed a treaty of friendship with the East India Company, and on the same day, that is 12th of July in 1823, Diana, the first steamship built in India, was unveiled in Calcutta, now Kolkata. Launched on 12th July 1823, the first Diana was constructed at Messrs. Kidd and Company Dockyard in Kidapore near Calcutta, India. The Diana was sent to the Irrawaddy River in 1825 during the Anglo-Burmese War from 1824 to 1826.
और आज ही के दिन 1889 में बुल्गारिया में नेशनल गार्ड्स यूनिट की स्थापना हुई।
In 1979, on this day, Kiribati, formerly the Gilbert Islands, declares independence from the UK.
और 2003 में आज ही के दिन उत्तर और दक्षिण कोरिया परमाणु हथियार मुद्दे पर बातचीत के लिए सहमत हुआ। और 2005 में मशहूर क्रिकेट अंपायर डेविड शेफर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया।
And today is also the paper bag day, which is observed on 12th July to spread awareness about using paper bags instead of plastic to help reduce plastic pollution. Plastic waste takes thousands of years to decompose, Akarshita. Isiliye ye bahut zaruri hai that we all understand the ill effects of single-use plastic bags. This day serves as a reminder of the importance of making environmentally conscious choices in our daily lives and encourage individuals and businesses to transition to more sustainable options. और एक और बहुत जरूरी दिन आज हम मना रहे हैं। वी आर सेलिब्रेटिंग द इंटरनेशनल मलाला डे टुडे टू ऑनर द पाकिस्तानी एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई। मलाला, हु एडवोकेट्स फॉर वुमेन्स राइट्स टू एजुकेशन अराउंड द वर्ल्ड, वाज नॉट अलाउड टू अटेंड स्कूल एज अ चाइल्ड, बट मलाला हाउएवर डिड नॉट एक्सेप्ट इट एंड रिफ्यूज टू स्टे एट होम। और एक लाइन में यहां पे मलाला की बोलना चाहूंगी, वन चाइल्ड वन टीचर वन बुक वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड।
जी, और श्रोताओं, अब बात उन महान शख्सियतों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है। आज हिंदी फिल्मों के जाने माने नायक, खलनायक और चरित्र अभिनेता प्राण की पुण्यतिथि है। प्राण ऐसे अभिनेता थे जिनके चेहरे पर हमेशा मेकअप रहता था और भावनाओं का तूफान नजर आता था, जो अपने हर किरदार में जान डालते हुए यह एहसास करा जाता था कि उनके बिना यह किरदार बेकार हो जाता। उनकी संवाद अदायगी की शैली को आज भी लोग भूले नहीं भूलते। 1940 में जब मोहम्मद वली ने पहली बार पान की दुकान पर प्राण को देखा था, तो उन्हें फिल्मों में उतारने की सोची और एक पंजाबी फिल्म यमला जट बनाई, जो बेहद सफल रही। फिर क्या था, इसके बाद प्राण ने कभी मुड़कर नहीं देखा। 1947 तक 20 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके थे और एक हीरो की इमेज के साथ इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। हालांकि लोग उन्हें विलेन के रूप में देखना ज्यादा पसंद करते थे। उनकी प्रमुख फिल्में हैं मधुमती, जिस देश में गंगा बहती है, उपकार, जानी मेरा नाम, परिचय, विक्टोरिया, जंजीर, मजबूर, कालिया, शराबी। तो आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये डायलॉग।
जी साहब, मैंने इस एरिया के तमाम ब्लैक लिस्टेड लोगों के नाम मांगे थे। क्या बात कर?
अभिजा साहब।
अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर। हमारा खुशकिस्मती कि तुम्हारे जैसे बड़े ऑफिसर ने हमको याद किया। हमारे लायक कोई खिदमत?
तुम्हारा नाम शेर खान है?
इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खान को कौन नहीं जानता। खैर, अब मुलाकात हो गई।
तक बैठने को न कहा जाए, शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं।
साहब, आज तक शेर खान से किसी ने इतनी बड़ी बात नहीं कही।
आज भारतीय फिल्म अभिनेता राजेंद्र कुमार की पुण्यतिथि है। राजेंद्र कुमार 1960 और 1970 के दशक में फिल्मों में सक्रिय थे। उन्होंने फिल्मों में अभिनय करने के अलावा कई फिल्मों का निर्माण और निर्देशन भी किया। हिंदी फिल्मों में अपने सफल अभिनय और बेमिसाल अदाकारी की वजह से राजेंद्र कुमार ने जो स्थान बनाया है वहां तक पहुंचना हर अभिनेता का सपना होता है। राजेंद्र कुमार की हर फिल्म इतनी हिट होती थी कि वह कई सालों तक बेहतरीन बिजनेस किया करती थी और यही वजह थी कि लोग उन्हें जुबली कुमार के नाम से पुकारते थे। अपने रोमांटिक व्यक्तित्व की उन्होंने सिनेमा जगत में ऐसी छटा बिखेरी कि उनकी फिल्में एक यादगार बन गई। फिल्म आरजू और आई मिलन की बेला हर फिल्म में राजेंद्र कुमार का एक अलग ही स्वरूप दर्शकों ने देखा। उनकी प्रमुख फिल्में थी गूंज उठी, शहनाई, ललकार, मदर इंडिया। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।
कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया।
आज अपने जमाने के विश्व प्रसिद्ध फ्री स्टाइल पहलवान और प्रसिद्ध अभिनेता दारा सिंह की पुण्यतिथि है। उन्होंने खेल और मनोरंजन की दुनिया में समान रूप से नाम कमाया और अपने काम का लोहा मनवाया। यही वजह थी कि लोग उन्हें अभिनेता और पहलवान दोनों तौर पर जानते थे। दारा सिंह ने अपने करियर की शुरुआत 1952 में आई फिल्म संग दिल से की थी। ये उनकी डेब्यू फिल्म थी। दारा सिंह की असल पहचान बनी 1962 में आई फिल्म किंग कॉन्ग से। इस फिल्म से उन्हें शोहरत के आसमान पर पहुंचा दिया। ये फिल्म कुश्ती पर ही आधारित थी। दारा सिंह ने रामानंद सागर द्वारा निर्मित धारावाहिक रामायण में हनुमान की भूमिका निभाकर हिन्दुस्तान के घर घर में प्रसिद्धि पाई थी। आइए सुनते हैं उनका ये डायलॉग और उसके साथ ये गीत।
मेरे पहलू में आके बैठो खुदा के वास्ते, इश्क को फिर गले लगा लो खुदा के वास्ते, मेरे पहलू।
And today is the birthday of Sulakshana Pandit, who is an Indian playback singer and former Bollywood leading lady belonging to the Mevati Gharana. Sulakshana's career as an actress spanned the 1970s and early 80s. As a leading lady, she has worked with most of the top actors of the 1970s like Jitendra, Sanjeev Kumar, Rajesh Khanna, Vinod Khanna, Shashi Kapoor and Shatrughan Sinha. And Akarshita, आपको पता है सुलक्षणा पंडित गाना भी बहुत अच्छा गाती थी, तो क्यों ना एक गाना हम सुनवा दें यहाँ पर।
मेरी जानियाँ तेरे देश में तीर इस तरह चलता है क्या, बतला जरा।
And we are also celebrating Parveen Dabbas's birthday today, who is an Indian actor, director and model who works predominantly in Hindi and English language films. Dabbas made his film debut in the 1999 film Dillagi and played a key role in a Malayalam movie. And his first major movie as actor was Monsoon Wedding, directed by Meera Nair. And since then, he has appeared in many Bollywood films. And here, let us listen to this beautiful song from the movie Monsoon Wedding.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अनुमति दीजिए आकर्षिता और रेनू को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की, लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड FM 100.1 MHz पर।
Yes, please stay tuned for Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, which is coming up, followed next by morning news in English at 8:15 a.m. And thank you for tuning in. Have a superb day. Namaskar.